आरवी की अर्जुन से बीच बीच में बात हो जाती थी। यहाँ आरवी शान के मन से नफरत मिटाने की कोशिश कर रही थी तो अर्जुन अतीत के पन्नों को पलटकर हकीकत सामने लाने की कोशिश कर रहा था, पर दोनों के हाथ सिर्फ नाकामयाबी ही आ रही थी। निया की डिलीवरी में अब 4 महीने रह गए थे, पेट बाहर दिखने लगा था और अर्जुन उसका और ज्यादा ख्याल रखने लगा था, पर ये प्यार और परवाह सिर्फ अपने बच्चे के लिए थी। निया अब उस बच्चे से शायद जुड़ने लगी थी, माँ बनने का खूबसूरत एहसास महसूस करने लगी थी, पर अर्जुन को लेकर अब भी वो उदासीन ही थी। वो इतना परेशान रहता था पर वो उससे कभी कुछ जानने की कोशिश तक नहीं करती थी। ठाकुर साहब इस दौरान अपनी बेटी को देखने और उससे बात करने के लिए तरसते ही रह गए थे, और वो जानते थे कि जब तक सारी सच्चाई और असली गुनाहगार सामने नहीं आ जाता, कुछ ठीक नहीं होगा, और उनकी मजबूरी ऐसी कि वो चाहकर भी इस मामले में कुछ कर नहीं सकते थे। अर्जुन से उन्हें सारी बातें पता चल गई थीं और अब वो अपनी ही नज़र में गिर गए थे, क्योंकि इस नफ़रत की शुरुआत उन्हीं से हुई थी जिसमें दो परिवार झुलस गए। अर्जुन और सृष्टि की दोस्ती बढ़िया चल रही थी। हर जगह के तनाव से जब वो परेशान हो जाता तो उसे सुकून सृष्टि के साथ ही मिलता था। वो अहम बनती जा रही थी उसके लिए, दोस्ती से बढ़कर बन चुका था उनका रिश्ता। अर्जुन जो बात किसी से नहीं कह पाता था वो सृष्टि से बड़ी ही कह देता था, और उनकी खूबी उनके रिश्ते को खास बनाती थी। रश्मि और रेहान का रिश्ता भी ठीक चल रहा था। उनकी शादी को मुश्किल से 1.5 महीने ही रह गए थे। दोनों ही अजीब दुविधा में फंसे हुए थे। आरवी और शान के बीच कुछ ठीक हो नहीं रहा था, और ऐसे वक्त पर वो अपने रिश्ते के बारे में सोचना नहीं चाहते थे, पर मना भी नहीं कर सकते थे। रेहान शान को कई बार समझा चुका था पर वो हर बार उसकी बात को इग्नोर कर दिया करता था। शान से हुई बात के बाद से रश्मि की सोच उसके लिए कुछ बदल सी गई थी। चिढ़ती अब भी थी, नाराज़गी अब भी थी, पर उसके साथ कई सवाल थे जिनके जवाब ना तो उसके पास थे और ना ही मिलने की कोई उम्मीद ही नज़र आ रही थी। शान के परिवार का वही हाल था। अंशु, आरवी और छाया के अलावा किसी से शान की बात नहीं होती थी। आरवी आज भी अपना हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभा रही थी, और उसका सबसे बड़ा असर सुभाष जी की सेहत पर नज़र आ रहा था। बहुत जल्द वो अपने पैरों पर खड़े होने वाले थे। शान के प्ले की रिहर्सल भी आगे बढ़ गई थी। उसने दोस्ती से धोखे वाला फेस कंप्लीट कर लिया था, थोड़ी सी कहानी बदली थी और आरवी से उसकी अनचाही शादी के सीन की रिहर्सल भी हो चुकी थी। फिलहाल उनके दुश्मनी और नफरत वाला सीन चल रहा था। कहानी को ऐसे घुमाई गई थी कि उसमें दिखाया गया था कि शान ने जानबूझकर अपने दुश्मन की बेटी से शादी की है और शादी के बाद उसे टॉर्चर कर रहा है, जो शादी और उसकी असली पहचान जानने के बाद उसने सच में किया था। ये एक वजह थी कि आजकल उनके बीच का मामला जरा बिगड़ा रहता था। आज करवा चौथ का दिन था। आरवी को अर्पिता जी ने आज जाने से मना किया था, पर वो नहीं मानी और रिहर्सल के लिए चली गई। सारा दिन उनका वहां बीता। फिर शाम होते ही शान ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि आरवी को ड्राइवर के साथ घर भेज दिया। सारा दिन भूखे प्यासे रहने और फिर रिहर्सल की वजह से आरवी बुरी तरह थक चुकी थी। घर जाकर उसने कुछ देर आराम किया और फिर तैयार होकर पूजा में शामिल हो गई। अर्पिता जी और उनकी महिला मंडली आज घर पर साथ में कथा सुनने वाली थीं। आरवी भी उनके साथ ही बैठी। डूबते सूरज को अर्घ देते हुए पूजा समाप्त हुई और कुछ देर बैठकर हंसी मजाक करने के बाद सभी औरतें अपने अपने घर चली गईं। अर्पिता जी ने आरवी को आराम करने को कहा, पर वो अंशु और सुभाष जी के साथ गई। अंशु उसे सारे दिन की कहानी सुनाने लगी, जिससे आरवी की सारी थकान दूर हो गई। शाम से रात हो गई। काफी इंतजार करवाने के बाद आकाश में चांद ने दस्तक दी और उसके दीदार को पलके बिछाए बैठे लोग व्रत खोलने लगे। घर की सर्वेंट्स भी साथ ही थीं। सुयश जी भी आ चुके थे, पर शान का कुछ अता पता नहीं था। अपने गुस्से को साइड करके आज अर्पिता जी ने उसे फोन भी किया, पर उसने फोन नहीं उठाया। यहाँ सब उसके इंतजार में बैठे थे और शान कहाँ था किसी को कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ आरवी ही नहीं थी जिसने आज व्रत रखा था और सारा दिन खटी थी। रश्मि की सगाई हो चुकी थी तो उसने भी रेहान के लिए व्रत रखा था, पर उसका व्रत सीक्रेट था। वो पिछले 15 मिनट से अपने रूम की बालकनी में खड़ी कभी बेचैनी से बादलों के बीच लुका छुपी खेलते चांद को देखती तो कभी व्याकुलता से नीचे सड़क को देखती। शायद उसकी बेचैनी भरी निगाहों को चांद से ज्यादा इंतजार किसी और के दीदार का था। साइड में टेबल पर आरवी की थाल और बाकी सब चीजें रखी थी। एक्चुअली उसके व्रत के बारे में रजनी जी जानती थी और वृंदा जी ने खुद फोन करके उसको सब बातें समझाई थी। दोनों माओं के कहने पर रश्मि ने व्रत रखा था, पर इस बारे में उन तीनों के अलावा कोई नहीं जानता था। अभी शादी नहीं हुई थी इसलिए उसने आलोक जी के सामने व्रत खोलने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे शर्मा रही थी और इसलिए वो चोरी छुपे यहाँ बालकनी में चांद से दीदार करने आई थी। पर जिसे उसका व्रत खोलना था वो उसके बुलाने पर भी अब तक वहाँ पहुँचा ही नहीं था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसकी भूख के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। काफी इंतजार के बाद बालकनी के ठीक नीचे रेहान की कार आकर रुकी। रश्मि तुरंत रूम से बाहर भागी और दौड़ती हुई नीचे चली गई। रेहान गेट पर दस्तक देता उससे पहले ही दरवाजा खुल गया और हैरानी से रेहान की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। और जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी रश्मि पर पड़ी, वो अपने होश गवाए अपलक उसे निहारने लगा। शिफॉन की गुलाबी साड़ी, गोल्डन ब्लाउज, खुले रेशमी बाल, लाइट मेकअप, माथे पर छोटी सी स्टोन वाली बिंदी, गुलाबी रंग में रंगे लब, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल। कमी थी तो बस सिंदूर और मंगलसूत्र की, वरना उसने बाकी सब श्रृंगार किया हुआ था और बहुत प्यारी लग रही थी। आज तो वो उस दिन से भी प्यारी लग रही थी जब रेहान के पेरेंट्स के लिए वो सजी थी। आज के श्रृंगार कुछ अलग सा था, चेहरे पर कशिश ही अलग और बेहद खास थी। अगर सिंदूर और मंगलसूत्र और हो जाता तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन ही लगती हो। बेचारा लेहान तो उसके इस रूप पर अपना दिलो दिमाग संभार चुका था और एकटक उसे निहारे जा रहा था, जबकि रश्मि को तो जोरों की भूख लगी थी और हंगर वाला एंगर भी आ रहा था उसे। वो रेहान को देखते ही भड़क उठी। कब बुलाया था मैंने तुम्हें और तुम अब आ रहे हो? इतना टाइम लगता है तुम्हारे घर से मेरे घर आने में? रश्मि की गुस्से भरी आवाज ने रेहान बाबू के आंखों के कार्यक्रम में जरा विघ्न डालकर उन्हें ख्वाबों की दुनिया से हकीकत में लापटका था। रेहान ने उसका सवाल सुना और उसके गुस्से से तमतमाए चेहरे को देखा तो अनायास ही उसके लबों पर मुस्कान फैल गई, जिसे देखकर रश्मि और ज्यादा चिढ़ गई और तुनकते हुए बोली, मैं यहाँ तुम पर गुस्सा कर रही हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो? क्या मैंने कोई जोक मारा है जो तुम अपनी बत्ती सी चमकाए जा रहे हो? नहीं, तुमसे कोई जोक नहीं मारा और मैं तुम्हारा गुस्सा देखकर नहीं मुस्कुराहा। वो तो तुमने सवाल ही ऐसा किया कि मैं मुस्कुराए बिना न रह सका, और गुस्से में तुम लगती ही इतनी हसीन हो कि मैं चाहकर भी अपनी मुस्कुराहट को छुपा नहीं सका।